जिंदगी 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 जिंदगी, कैसे नए रंग दिखलाए जिंदगी, असबाक हर दिन नए लाए जिंदगी।
पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है और इसमें एक बड़ा तबका बराह रास्त काश्तकारी की फील्ड से वाबस्ता है। चुनांचे हम काश्तकार की जिंदगी रिकॉर्ड करने के लिए अपने प्यारे वतन पाकिस्तान के प्यारे सूबे बलूचिस्तान के इलाके औस्ता मोहम्मद पहुँचे। काश्तकार तबके में बाज़ औक़ात दो किस्में होती हैं, एक जमीन के मालिकान होते हैं और दूसरे किसान, जिन्हें हारी भी कहा जाता है, और पंजाब में इस तबके को मजारे कहा जाता है। कहीं कहीं जमीन संभालने वालों को नायब भी कहा जाता है। जमींदार हाजी दिलविश अत्तारी के साथ उनकी जमीनों पर जाने का शेड्यूल बनाया। उनकी जमीन जो गोठ मीर अली खान रिंद में वाके है, वहाँ पहुँचे। वहाँ पर काश्तकारों के साथ गुफ्तगू हुई, आप भी सुनिए और जिंदगी का ये पहलू भी देखिए।
दिलविश भाई, इनको तो देख के जो हमारे यहाँ गैस नहीं आती ना बाज का,
अच्छा
गैस चली जाती
है,
तो मुझे तो वो नेमत नेमत लगने लग गया।
ये तो है इनकी, यानी अभी इस वक्त जो कंडीशन है ना हमारे यहाँ, हम अपने हिसाब से सोचो तो हम बहुत ज़्यादा आसाइशों में रह रहे हैं।
सही,
बिल्कुल। एक घंटे की अगर लोड शेडिंग है हमारे लिए, ऐसे समझो वो भी नेमत है। ये तो इनके पास तो बिजली नहीं है,
अल्लाह।
एक घंटे की गैस की लोड शेडिंग हो गई हमारे पास, फिर भी उसे नेमत समझी, इनके पास तो वो भी नहीं है।
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दुनिया के मामले में अपने से नीचे वालों को देखा जाए तो आपको एहसास होगा कि हमारे पास क्या क्या कुछ है। अल्लाह।
जिंदगी 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 जिंदगी।
बनने को भी हाल में चला देते हैं,
हम भी तोड़,
यानी बनना क्या करते हैं, वो तोड़ देते हैं और क्या करेंगे वो, फिर जब बनना बीच में हाल में तोड़ दिया, अब अगले बंदे की जो जमीन है ना,
सही,
उसको 6-7 फुट जमीन उसकी जो है ना, वो पूरा पूरे एकड़ के अंदर, यानी वो पूरा जो खेत है,
सही,
उस पूरे खेत में वो जो जमीन है वो अपने उसमें खाते में कर लेंगे। सारे ऐसे नहीं करते, लेकिन कुछ लोग ऐसे करते भी हैं।
हमारे पास ऐसे नहीं देख रहे बने बने हुए
जी, हम
ये हम हल्के टाइम यानी नहीं तोड़ते,
इसके
अंदर ही इसको हल लगा के
सारी
फसल इसमें कर रहे हैं। और किसी की जमीन अपने बॉर्डर बने हुए
बनने को उर्दू में ना पगडंडी कहते हैं।
अच्छा,
हाँ जी। अल्लाह जी, क्या फरमा रहे थे?
अगर मैं इसके चला जाऊँ किसी और को दूंगा फिर एज इट इज ही रहेगा, इसको तोड़ेंगे नहीं, इस बनने को एज इट इज ही रहेगा। चाहे कोई और नया जमींदार रहेगा तो उसके साथ मैं यही बात करूंगा कि भाई ये जमीन ये मुस्तकबिल के लिए, इसको आप नहीं हटाएंगे, ये कमिटमेंट है हमारी। बाकी जो जमीन के अपने मालिकान है, जैसे मेरी जमीन के ऊपर तो मेरे किसान होंगे, तो मेरी जमीन में होंगी उनकी किसान, उनके जमीन में वो मेरी राशि से कटेगा, वो उनकी राशि से नहीं कटेगा। हमारे उनको बोलते हैं नायब,
नायब
नायब बोलते हैं।
सही सही,
जो हमारी जमीनों को सब संभालता है।
ये बंदा क्या कर रहा है?
यही है, इसको काट रहा है जो एक्स्ट्रा जो है ना घास फूस है ना जमीन में, उसको काट रहा है।
वो जंगली यही होती है वो,
ये देखे साथ।
हाँ जी हाँ जी हाँ,
जमा की भी इसको, और ये अपने जानवर को भी देगा, जमीन से बारिश हो रही है।
जिंदगी जिंदगी जिंदगी,
क्या हाल, खैरियत, तबीयत ठीक है?
ये ड्रेस होता है खेतों जाने का।
सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गोठ मीर अली अहमद खान रिंद, यहाँ पर इस वक्त जो है वो हम मौजूद हैं और एक किसान की, एक हारी की ज़िंदगी कैसे गुजरती है, उसकी क्या रूटीन होती है, कुछ उसके बारे में आपको इंशाल्लाह बताएंगे। दिलविश भाई हमारे साथ हैं, माशाल्लाह ये इनके वालिद साहब के नाम पर ये गोट है और इसकी हालत जो है वो बहुत बेहतर लग रही है। यानी अगर मैं यूं कहूं कि यहाँ पर हम कुछ देर के लिए रुक सकते हैं, एक दिन तो रुक ही सकते हैं, हाँ जी नासिर,
सही बात,
मुमकिन है,
मुमकिन,
ठीक है। آئیے آپ کو کچھ جو ہے نا وہ ٹولز دکھاتے ہیں زراعت کے لیے جو استعمال ہوتے ہیں. یہ ہے ٹریکٹر, اس کو کہتے ہیں ٹریکٹر. یہ یوں سمجھ لیں کہ کسان کی زندگی کے لیے یہ ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے. کیا کہیں گے
جی ہاں, ایسی
ایسی بات ہے
جی ہاں. ایسی
ہل چلانا ہے تو ٹریکٹر کے ذریعے سے چلے گا, روٹاویٹر چلانا ہے وہ بھی ٹریکٹر کے ذریعے سے چلے گا, سیشر چلانا ہے تو یہ بھی جو ہے وہ ٹریکٹر کے ذریعے سے چلے گا, ڈسک ہل چلانا ہے تو وہ بھی ٹریکٹر کے ذریعے سے چلے گا, جو ہے وہ بار برداری کرنی ہے تو یہ بھی کام ٹریکٹر کے ذریعے سے ہی ہوگا. تو ٹریکٹر جو ہے نا وہ یہ یوں سمجھ لیں کہ کسان کی زندگی میں ایک بڑا اہم جو ہے وہ حیثیت رکھتا ہے. اچھا یہ ہے جی, اس کو کیا کہتے ہیں؟
یہ ٹرالی ہے.
یہ ٹرالی ہے
جی ہاں.
یہ دیکھیں جی, اس میں سامان وغیرہ جو ہے فصل وغیرہ جب ہو جاتی ہے تو اس کو لاد کے پھر وہ کیا ہے شہر تک یا منڈیوں تک جو ہے وہ لے جاتے ہیں. یہاں پر یہ دو تھریشر جو ہے وہ رکھے ہوئے ہیں, یہ دونوں ورکنگ میں؟
جی ہاں دونوں ورکنگ میں,
دونوں کام کرتے ہیں.
ایک گندم کا ہے جی, ایک جو ہے نا شالی کی,
الگ یعنی ایک دھان کے لیے ہے اور ایک گندم کے لیے ہے. یہ تھریشر یہ کہلاتا ہے. تو فصل کو سنبھالنے کے لیے, یعنی یوں سمجھ لیں کہ جب جیسے فصل تیار ہوگی تو اس کی کٹائی ہو جاتی ہے
جی,
اس کی ہارویسٹنگ کے لیے جی جی بالکل یہ استعمال ہوتا ہے. اچھا یہ اب جدید نظام بھی آ گیا ہے نا
جی ہاں,
کہ وہ پورا ہارویسٹر مشین آتی ہے
جی,
وہ خود ہی کاٹ بھی لیتی ہے اور اپنے جمع بھی کر لیتی ہے اور یہ بھی
وہ پراپر ایک ہارویسٹر ہوتا ہے.
پنجاب میں بھی ایک بڑا طبقہ ہے جہاں یہ جیسے گندم ہے نا
جی,
تو گندم جب پک جاتی ہے بالکل تیار ہو جاتی ہے تو پھر اس کو کیا کریں گے, اس کو کاٹ لیں گے. بالخصوص وہ لوگ جنہوں نے اپنے پاس مال مویشی رکھے ہوئے ہیں نا, وہ تھریشر کا استعمال کرتے ہیں کہ اس سے وہ پنجابی میں کہتے ہیں چوڑی بھی مل جاتی ہے, بھوسا بھی مل جاتا ہے.
ایسے ہی ہے,
ایسا ہی ہے نا
جی.
اچھا یہ فروخت بھی ہوتا ہے, یہ میں بتاؤں آپ کو, بھوسا اور جسے توڑی بھی کہتے ہیں, یہ جانوروں کے چارے کے طور پر اس کو فروخت بھی کیا جاتا ہے, بیچا بھی جاتا ہے. تو یہ تھریشر ہے, تو یہ فصل کی ہارویسٹنگ کے لیے جو ہے وہ استعمال ہوتے ہیں. ابھی فصل کا سیزن ہے نہیں ورنہ یہ چلتا کیسے, یہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں. بہرحال آئیے آپ کو کچھ اس کے ویژولس دکھا دیتے ہیں جب یہ چلتا ہے تو کیسے چلتا ہے اور کیا کام کرتا ہے. آ جائیں جی.
سارے جگ کو اس نے بنایا, سارے جگ کو اس نے بنایا, جو رب ہے میرا جو سب ہے میرا.
یہ جو حل ہے یہ کوئی الگ قسم کا ہی حل لگ رہا ہے یہ
جی ہاں. یہ پانچ, اس کو بولتے ہیں پنجری بولتے ہیں, اس میں پانچ وہ لگے ہوتے ہیں اور وہ ستر یا اس کو سات ہوتے ہیں, اس میں سات وہ کلی ہوتی ہیں, سات سے لگاتا ہے, یہ پانچ سے لگے گا. یہ تھوڑا موٹا ہوتا ہے, وہ تھوڑا پتلا ہوتا ہے اس کے.
یہ زمین کو برابر کرنے کے لیے
جی ہاں, وہ پچھلا بلیڈ ہوتا ہے ٹریکٹر کا, پیچھے سے جو ہے لیول کرنے کے لیے ہوتا ہے.
صحیح,
تھوڑا سامنے ایک پلر ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں, اس کو لیول وہ پھر بہت زیادہ لیول کرنے کے لیے ہوتا ہے.
صحیح.
اور یہ آگے والا بلیڈ
پنجاب میں نا جی وہ ایک لکڑی کا ہوتا ہے, اس کو سہاگا کہتے ہیں. یہاں پر بھی ہے کوئی سسٹم اس کا؟ جیسے پنجاب میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ ہل چلانے کے بعد وہ لکڑی کا ایک وہ ہوتا ہے, اس کو سہاگا کہتے ہیں. تو وہ زمین پر ایک دفعہ کیا کرتے ہیں, اس کو مارتے ہیں تو اسے کیا ہو جاتا ہے, وہ ساری زمین جو ہے نا وہ برابر ہو جاتی ہے, لیول ہو جاتی ہے.
وہ ایک چیز ہے ہمارے پاس, اگر آپ چلیں تو میں آپ کو دکھاتا ہوں, اس کو پیلر بولتے ہیں.
چلیں
اچھا دکھاتے ہیں آپ.
چلو
یہ ہوتا ہے ہمارے پاس, یہ لوہے کا یعنی بنا ہوتا ہے. یہ تھوڑا لمبا اس وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ یہ زمین کی لیولنگ کے لیے ہوتا ہے.
صحیح.
تو ٹریکٹر کے پیچھے لگائیں گے اس کو اور یہ جو ہے نا لیول کرے گا.
صحیح.
اس کی تھوڑی لمبائی زیادہ ہے, اس کی تھوڑی کم ہے.
صحیح.
اس کو چھوٹا ٹریکٹر لے گا, اس کو بڑا ٹریکٹر
لے گا.
ٹھیک ہے. اچھا ایک اور چیز یہاں پہ آپ کو دکھاتا ہوں, یہ چیز ہے, یہ گندم کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں سیڈنگ کے لیے. عام طور پر پرانے دور پہ جس طرح
ہاتھ سے وہ چھڑکاؤ
کرتے تھے.
صحیح.
تو اس میں یہ پورا ٹینک بنا ہوا ہے اوپر اس کا.
صحیح.
اور نیچے اس کی پائپنگ لگی ہے اور یہ اس کے اوپر وہ ہل کا سسٹم بھی ہے.
صحیح.
ٹریکٹر اس کو کھینچے گا, اس کو ہل بھی لگاتا جائے گا اور پیچھے سے اس کے پائپ سے جو ہے نا وہ
دانا بھی ڈالتا جائے گا
اور اس دانے میں جو ہے نا فرٹیلائزر اور دونوں یعنی کھاد اور
بیج دونوں
ایک ساتھ کر سکتے ہیں.
ماشاء اللہ یہ تو جدید ٹول ہوا, یہ تو ماشاء اللہ. صحیح. مجھے یاد پڑ رہا ہے یہ ہے نا دھان کی فصل, اس کو وہ کرنے کے لیے کاشت کرنے کے لیے بھی وہ ایک تھی مشین, وہ دیکھی تھی میں نے.
جی ہاں.
تو وہ کیا کرتے تھے, وہ جیسے وہ ہوتی ہے نا اس کی, ہم تو اسے کہتے ہیں
نرسری کی پلانٹنگ جس طرح ہوتے
جی,
نرسری پلانٹنگ اس کو,
نرسری پلانٹنگ. یہ تو آپ نے اس کو انگلش کا لفظ بول لیا نا جی,
ابھی اردو میں اس کا الفاظ مجھے بھی یاد نہیں ہے, پر جو ایگریکلچر کے حساب سے اس کو نرسری پلانٹنگ کرتے ہیں, یعنی ایک جگہ سے نکال کے جہاں پہ بیج بنی ہے.
ہاں جی ہاں جی ہاں جی.
زمینوں میں جو ہے نا فاصلے سے اس کو بولتے ہیں. یہ ہمارے یہاں پہ زمینوں میں رہنے والے کسان ہیں.
تاکہ گرمی نہ لگتی ہے,
لگتی ہے گرمی,
अच्छा, गर्मी लगती है तंग, यानी आपको भी गर्मी लगती है?
हाँ बिल्कुल लगती है।
कैसे गुजारा करते हैं फिर?
बस गुजारा है, बस पानी है, पानी सिर से डालते हैं। हाँ ये हाथ वाला पक्का है, टाइम पास है, क्या करें।
कहाँ है पंखा, हाथ वाला पंखा कहाँ?
झली झली खड़िया,
झली झली
झली,
हाँ झली हाथ वाला पंखा, सिंधी में इसको झली कहते हैं। कराची में इसको पता क्या कहते हैं आप? ये पता है आपको कराची में क्या कहते हैं? हाथ वाले पंखे को कराची में कहते हैं हिम्मत फैन।
हिम्मत फैन,
हाँ जी हिम्मत फैन। यानी जितनी आप में हिम्मत है उतना आप जो है उसको मतलब कर लेंगे, इस्तेमाल कर लेंगे। अल्लाह अकबर।
हमको गर्मी लगती है, बर्दाश्त करता है,
वक्त गुजर ही जाता,
वक्त गुजर गया,
हाय हाय करते भी वक्त गुजर जाता,
हाय करके वक्त गुजर,
और बर्दाश्त करके भी वक्त गुजर जाता,
बर्दाश्त करके भी वक्त गुजर
गुजर जाता,
फिर क्या करे
बंदा, सबर बर्दाश्त करके वक्त गुजार ले,
शुक्र है फिर भी शुक्र।
वाह 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 वाह, माशाल्लाह करीम, अल्लाह बरकत दे आपको। यहाँ कौन कौन सी फसल जो है वो काश्त की जाती है?
शाली भी है जी, और गंदुम भी है,
गंदुम
थोड़ी थोड़ी गंदुम है, कुछ जो है सारी के पीछे में सरसों है,
सही
वो कहते हैं। अभी तो गर्मी बहुत है, शाली को भी मर्द लगा है, अल्लाह माफ करे।
अच्छा, यानी कोई इससे बीमारी लगी फसल?
बीमारी लगी है।
कौन सी बीमारी लगी?
इतने ये पहला है, इतने रखे थे
2-3 दिन हुए हैं, जो बहुत गर्मी हुई है, इस गर्मी की वजह से जो है कीड़ा लगा है फसल को। पहले फसल अच्छा था, अभी इस वक्त जो है बहुत मर्ज है उसको, कीड़ा है। अभी हम सोचते हैं इसको क्या करें, स्प्रे की ज़रूरत है या कोई और चीज़?
गर्मी झल्ली आ गई भी, झल्ली
झल्ली भी है।
वाह भाई वाह, माशाल्लाह। ये घर में बना हुआ है?
जी हाँ।
खुद बनाया हुआ है?
जी हाँ।
सही, किस चीज़ का बना हुआ है
ये? खज्जी का है।
हाँ ये दिलवेश भाई,
हाँ हाँ फड़के,
जी जी जी, वो बड़ा इसकी एक टेक्निक है इसको बनाने की।
खजूर की बनी हुई है सलमान भाई, जैसे ये देख रहे हैं चारपाई बनी है, तो एक दूसरे की उसके साथ यानी एक टेक्निक से बनी है, और एक खूबसूरत डिज़ाइन भी बना हुआ है इसके अंदर भी है। अभी इन्होंने ऊपर इसके ऊपर कशीदा करके कपड़ा लगा दिया, इसको और ज़्यादा खूबसूरत बना दिया।
इसके दो फायदे हैं, एक तो क्या है कि इसके ऊपर कपड़ा लग गया है, और इसके अब तिनके भी जो है वो नहीं गिरेंगे,
महफूज रहेगा ये।
अच्छा, बाद को बच्चे क्या करते हैं, जैसे हम लोग क्या करते थे, घर वाले पंखा क्यों लेकर आते थे, तो हम क्या करते थे, हम उस पंखे को उसके जो होते थे तार उनको जो है वो तोड़ते रहते थे उसको,
सही,
तो पंखा बेचारा वीरान हो जाता है इस तरह, तो ये बच्चों से भी बच जाता है फिर, इस तरह खूबसूरत भी लग रहा है
जी।
इस बच्चे का नाम क्या? शान अलवाए तो सरफराज, माशाल्लाह। क्या तो कर रहे हो, बच्चा शर्मा रहा है माशाल्लाह, अल्लाह जिंदगी सलामती दे।
काश्तकार भी मौजूद थे और उनके बच्चे भी मौजूद थे। वहाँ एक बच्चा मैंने देखा जो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने उस बच्चे को अपने पास बुलाया तो उस बच्चे ने रोना शुरू कर दिया। उस बच्चे के रोने ने मुझे बेचैन किया। मैंने पूछा कि ये क्यों रो रहा है, तो वहाँ बताया गया कि बाज़ुकात यहाँ पर हिफाजती टीके लगाने वाले लोग आते हैं और वो बच्चों को अपने पास बुलाते हैं और फिर उन्हें हिफाजती टीका लगाते हैं। बच्चा शायद हिफाजती टीके के डर से रो रहा है। चुनाचे बच्चे के गम को दूर किया गया, उसे बिस्किट दिए गए और उस बच्चे को हैप्पी किया गया। अल्लाह ताला हमें बच्चों का दिल खुश करने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह तबारक व ताला हमारे अच्छे आमाल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। बहरहाल काश्तकार तबके के साथ क्या गुफ्तगू हुई, आइए सुनिए।
अच्छा ये बताएं, ये जो कीड़े वगैरह लग जाते हैं फिर इसका क्या इलाज करते हैं?
क्या इलाज? स्प्रे है, अभी तो ज़रात वाले कह रहे हैं कि भाई स्प्रे ले जाओ, स्प्रे लगाओ, कोशिश कर रहे हैं, सारी चीज़ अल्लाह के बस में है,
अल्लाह आफियत अता फरमाए। अच्छा ये बताएं कि क्या कोई मतलब ऐसे कीड़े भी होते हैं जो जिस फसल के लिए मुफीद होते हैं, ऐसे भी होते हैं?
जी हाँ,
दोस्त कीड़े भी कहते हैं।
तो कीड़ा तो मुफीद फ़ायदेमंद कोई भी नहीं, नुकसान वाला है।
नहीं कुछ कीड़े होते हैं सुनिए वो खा जाते हैं?
नहीं नहीं कोई तो ऐसा कीड़ा नहीं है, अभी तो खतरा है हमारे फसल को, बहुत कीड़ा नुकसान दे रहा है, गर्मी की वजह से हुआ है, पहले नहीं था।
नहीं ये दिलविश भाई, सरात में ना यानी एग्रीकल्चर स्टडी अगर आप करें तो उसमें वो बताते हैं कि जिसे बोले दोस्त कीड़े के नाम से ना वो होते हैं, ये सुंडी होती है। ऐसा कपास की फसल क्या नहीं होती?
किसी भी किस्म का कीड़ा होगा ना फसल को नुकसान देगा, धान की फसल में।
सही,
तो
वो फिर कपास में
यानी इवन हमारे यहाँ यानी फसल में चूहे जो होते हैं ना,
ओहो
वो भी आ जाते हैं ना, वो भी नुकसान देंगे क्योंकि फसल को काटते हैं
चूहे जो है ना।
जी हाँ,
ये वो फसल है ना उसकी, मूंगफली की फसल, उसको बड़ा नुकसान देता है।
क्योंकि यहाँ पे हमारे पास भी फसलों में होते हैं।
अच्छा,
हाँ यहाँ भी होते हैं, वो भी फसल को नुकसान देते हैं।
अल्लाह
एक मेरे ख्याल से वो पानी के हिसाब से यहाँ पे एक जानवर है वो, यानी मेंढक, वो यहाँ पे होता है, वो फसल को नुकसान नहीं देता,
नुकसान नहीं देता,
बस वही एक चीज़ है जो जानदार में शुमार है और वो जो है नुकसान नहीं देता। बाकी सारी चीज़ें फसल धान के लिए जो नुकसान दे।
गंदम की फसल में कितना बीज इस्तेमाल होता है?
7-8 मन
बीज।
जी हाँ,
7-8 मन। मन
40 किलो ऐसे समझो मन में है।
सही है,
7-8 मन हम डालते हैं।
किस में? एक एकड़ में?
हाँ नहीं नहीं 4 एकड़ में।
4 एकड़ में?
जी हाँ।
एक एकड़ में फिर 2 मन हो गया?
जी हाँ।
सही,
वो भी कुछ रह जाता है, कुछ वो जो है बीज है वो निकलता है, कुछ नहीं निकलता, क्योंकि हमारी जमीन जमीन जो है साराली है, अभी ख़ास ज़मीन नहीं है, इस वजह से।
ज़मीन की भी किस्में होती हैं मध्य जल के नाजरी?
जी हाँ, किस्में
एक होती है मेरा ज़मीन, एक होती है कलर वाली ज़मीन, एक होती है मेरा मिट्टी, एक होती है कलर वाली मिट्टी, एक होती है चिकनी मिट्टी। तो फसलों के लिए जो अच्छी ज़मीन होती है वो मेरा मिट्टी कहलाती है, ऐसा ही है?
जी हाँ
जी
जी हाँ।
ये ज़राअत की बहार है, एग्रीकल्चर जो पढ़ा हुआ है याद आ रहा है। और किस तरह की मिट्टी होती है? रेतली मिट्टी भी होती है?
जी हाँ,
रेतली मिट्टी भी होती है।
हाँ
सही। यहाँ और कौन कौन सी फसलें काश्त होती हैं? कोई जैसे जावदरी वगैरह है, जावत्री वगैरह है, वो यहाँ काश्त होती?
नहीं नहीं, हमें तो इधर बस एक हमारा यही शाली का फसल है और सरसों करते हैं और जो है गंदम है, तीन फसल।
यानी तीन फसलें हैं यहाँ पे। सब्जियाँ वगैरह यहाँ नहीं लगाते?
नहीं नहीं, पानी नहीं है, जड़ वगैरह नहीं है, दरियाई पानी है। अभी जिस टाइम में वो सब्जी का टाइम आता है तो हमारा पानी इधर है ही नहीं, गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है, इस वजह से नहीं होती।
ट्यूबवेल वगैरह नहीं यहाँ पे?
नहीं
नहीं लगता,
बहुत सिस्टम नहीं है, जड़ वगैरह नहीं है,
शहर से ले आते हैं।
बड़े तालाब हैं हमारे पास पीने के लिए। जी हाँ, 3-4 महीने हम उस तालाब से गुजारा करते हैं मजबूरन, क्या करें, मजबूरी है, टाइम पास तो करना है ना।
यहाँ बोर वगैरह नलके वगैरह नहीं
है? नहीं नहीं लगते हैं।
नीचे ज़मीन में पानी नहीं है?
पानी है ज़मीन में, ज़मीन में पानी है पर पानी खा रहा है। कुछ जगहें यहाँ पे होती हैं जहाँ पे पानी मीठा है, यानी जहाँ पे ज़्यादातर ज़रीय ज़मीन है ना वहाँ पे पानी खा रहा है।
यानी वो पानी अगर फसलों को लगाएंगे तो फसल का बेड़ा गर्क हो जाएगा?
नहीं, कुछ ज़मीनें यानी जहाँ पे ज़रा ही ज़मीन है ना, कुछ इलाकों में यानी जो बोरिंग करके ज़मीन का पानी लेके यानी फसल करते हैं, सब्जियाँ करते हैं, यहाँ पे वो नहीं है, क्योंकि ज़मीन के यहाँ पे जो 60 लेवल ज़्यादा होता है, पीएच लेवल पानी में बहुत ज़्यादा होता है, तो जिसकी वजह से वो ज़मीन खारा, पानी खारा होता है, तो उसमें आबादी नहीं होती।
पानी का पीएच लेवल दिलवेश भाई ने बात की तो इसका, इसके बारे में आपको बताऊं, ये 1 से जो है वो स्टार्ट होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यानी यूँ ऊपर फिर ये जाता है। जितना पानी का पीएच लेवल कम होता जाएगा उतनी उसकी तजाबियत बढ़ती जाएगी, और जितना पानी का पीएच लेवल बढ़ता जाएगा उतना उसकी असासियत जो उसके अंदर होती है वो ज़्यादा होती जाएगी। तजाबियत और असासियत, जिनको केमिस्ट्री मालूम है उनको मज़ा आएगा बात सुनकर। जैसे एक होता है एसिड और एक होता है बेस। एसिड कहते हैं तेजाब को और बेस कहते हैं असास को, यानी ये दोनों आपस में जो समझ लेंगे ये उलट होते हैं, ठीक है। एसिड के अंदर अगर लिटमस पेपर को डाला जाए तो वो रेड हो जाता है,
कलर चेंज कर लेता है,
और उसी एसिड और उसी लिटमस पेपर को, यानी लिटमस पेपर वो तो नहीं डाल सकेगा, एसिड के अंदर लिटमस पेपर डालेंगे तो वो रेड हो जाएगा, और असास में बेस में लिटमस पेपर को डालेंगे तो वो ब्लू हो जाएगा,
कलर चेंज कर लेगा
अपना। तो इंडिकेटर ये इस्तेमाल होता है। इसी तरह जिस तरह लिटमस पेपर इस्तेमाल होता है ना, वैसे एक और इंडिकेटर होता है जिससे पता चलता है कि ये तेजाब है या ये असास है, बेस है, एसिड है, क्या है, तो उसको कहते हैं मिथाइल ऑरेंज, यानी ये लिक्विड में होता है। तो एक हद तक इसका प्रैक्टिकल भी हमने किया था जब हम पढ़ते थे कॉलेज में, तो इसका किया था प्रैक्टिकल। तो वो जब मिथाइल ऑरेंज मिलाते हैं ना उसके अंदर, बेस के अंदर पहले बेस बनाते हैं, यानी सोडियम को सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, कास्टिक सोडा, इसको जब पानी में डालते हैं ना तो इससे वो क्या होता है कि वो बेस बन जाता है, एहसास बन जाती, फिर उसमें जब मिथाइल ऑरेंज डालते हैं तो उसका रंग जो है वो जामनी हो जाता है, ठीक है
जी।
अच्छा फिर क्या करते हैं, फिर वो एक ट्यूब के अंदर एक वो प्रिटस पर सेट किया होता है एसिड, तो उसको थोड़ा थोड़ा डालते हैं, यानी जितना आपने जैसे 10 ml अगर आपने बेस डाला है तो 10 ml आप उसमें जब एसिड डालेंगे तो उसका जो रंग है ना, वो जो पहले उसका जामनी रंग था तो वो रंग बिल्कुल क्या हो जाएगा उसका, रंग खत्म हो जाएगा उसका, बिल्कुल नॉर्मल
पानी की तरह जिस तरह होता है,
पानी की तरह हो जाएगा ये
पुरानी शक्ल में
जी। तो ये इट्स मींस के ये एसिड और बेस दोनों क्या हो गया, अब इसके अंदर बराबर हो गया। तो हम जो आमतौर पर पानी पीते हैं उसकी पीएच जो है ये 7 से 8 के दरमियान दरमियान होती है, आमतौर पर जो हम पीते हैं 7 से 8 तक यूं ही आप देखें होती है। तो बहरहाल अल्लाह आफियत वाला मामला फरमाए, अल्लाह ने बड़ी मेहरबानियां फरमा रखी हैं हमें, अल्लाह पाक का शुक्र जो है वो अदा करना चाहिए। अच्छा ये बताएं, हम अभी जैसे ये निकाल रहे हैं जो उसमें से फसल में से, जैसे आपने बताया ना घास निकाल रहे हैं, तो ये अभी निकालते हुए दिखा सकते हैं
जी हाँ।
मैं आपको यहाँ से गर्म मध्य जल के नाजरी किसान है ना, ये इसकी कोशिश ये होती है कि मेरी फसल के अंदर कोई जड़ी बूटी नहीं होनी चाहिए, यानी ऐसी जड़ी बूटी जो उसको नुकसान दे रही है, घास है और खुदरो पौधे मुख्तलिफ तरह के होते हैं, ये बड़े ख़तरनाक होते हैं। ये क्या करते हैं, तो ये जो इस तरह की जो होती है ना खुदरो पौधे होते हैं, जो जड़ी बूटियाँ जो उगाती हैं फसलों के अंदर, तो उनको बाकायदा तलफ किया जाता है, ख़त्म किया जाता है। कैसे, उनको गोडी करके ख़त्म किया जाता है, उनको स्प्रे करके जो है वो ख़त्म किया जाता है। तो इसके मुख्तलिफ तरीके होते हैं, क्यों, इसलिए कि ये जो खुदरो पौधे जड़ी बूटियाँ होती हैं क्या करती हैं, ये जो खाद और पानी होता है ना उसको ये इस्तेमाल करते रहते हैं, उसको इस्तेमाल करते रहते हैं, ये तो फल फूल जाते हैं और फसल का बेड़ा गर्क हो जाता है। तो फसल को अगर आपने सही रखना है और आप चाहते हैं कि जो न्यूट्रिशन है ज़मीन के अंदर वो बाकायदा तौर पर बीज को मिले, फसल को मिले और वो अच्छी हो, तो उसके लिए ज़रूरी है कि फसल में से जड़ी बूटियों को निकाल कर ख़त्म कर दिया जाए, चाहे गोडी के ज़रिए से, चाहे उसको स्प्रे के ज़रिए से, यानी जो भी उसका तरीक़ाकार है। इसी तरह समझने की बात है, इंसान के अंदर कुछ बुरी आदत होती हैं, वो क्या करती हैं, वो उसके करैक्टर को, उसकी इज्जत को, उसकी मॉडेस्टी को ये चूस लेती हैं और बंदे का हाल बेहाल कर देती हैं। जिस बंदे में बुरी आदतें हैं उसको चाहिए कि जिस तरह किसान अपने फसल में से ये फालतू और ये जो नुकसान जड़ी बूटियाँ होती हैं उनका खात्मा कर देता है, तो हमें भी चाहिए कि हम अपने अंदर से वो बुरी आदतें जो हमारे अखलाक को, हमारे किरदार को, हमारे तरीक़ेकार को, हमारा जो एक अच्छा अंदाज है उसको जो डैमेज कर रही हैं, उन बुरी आदतों से हम अपने आप को बचाएं, तभी हम मुआशरे के अंदर अच्छे आदमी बनकर वक्त गुजार सकते हैं। जिस तरह फसल में से जड़ी बूटियाँ निकलेंगी और जो फसल में होना चाहिए फसल को वही फसल में रहेगी, ज़मीन में रहेगी, जिस तरह फसल में से जड़ी बूटियों को निकलना चाहिए और ज़मीन में फसल को रहना चाहिए, तो इससे फसल क्या होगी, अच्छी होगी। तो इंसान के अंदर से जब बुरी आदतें निकल जाएंगी और अच्छी आदतें ये अपने अपना करके रखेगा, उनके साथ चलता रहेगा, तो इंशाल्लाह दुनिया और आखिरत में इसकी बरकतें हासिल करेगा। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। आइए आपको ज़रा दिखाते हैं कि किस तरीके से ये धान की फसल में से जो खुदरो घास वगैरह होती है उसे कैसे निकालते हैं।
जिंदगी
अच्छा मैं तो ये पंखा साथ लेके घूम रहा हूँ, मैं तो चूँकि किसान नहीं हूँ लिहाजा मसला नहीं है, बल्कि इसको छोड़ ही दें यार,
कोई बात नहीं, चलते
हैं। काशी भाई चलेगा ये छोड़ दो इसको, नहीं छोड़ देते हैं, ये दे दें यार जिसका है उनको दे दें। ये जो ट्रैक्टर है ना ये बड़ा हैवी ड्यूटी ट्रैक्टर है और ये रूसी ट्रैक्टर कहलाता है, ऐसी बात है,
रूसी ट्रैक्टर।
अच्छा वो जो हमने आपको पहले दिखाया वो उसको मैसी कहते हैं,
ठीक
जी हाँ, ये रूसी, ये रूसी है।
जिंदगी
की सारी चावल की फसल जो है नजर आ रही है माशाल्लाह।
अब ये देख रहे हैं जैसे ये जो घास वगैरह होती है एक्स्ट्रा,
इसको क्या कहते हैं, जंगली जई कहते हैं?
जी हाँ जंगली जई,
जंगली जई
हम लोग तो जंगली घास होती है वो अच्छा, बोलते हैं।
इसका एग्रीकल्चरल नेम भी है एक, दिलवेश भाई
जी
आप देखें मदी जल के नाजरीन ये माशाल्लाह। मैं अर्ज करूँ कि मैं तो अभी ये प्रैक्टिकल करने की पोजिशन में नहीं हूँ क्योंकि आप देखें ना इसमें पानी है और धान की फसल शुरू भी पानी से होती है ख़त्म भी पानी पे होती है और जब चावल बन जाते हैं तो भी पानी ही जलता है उनमें और फिर जब बंदा वो खा लेता है तो भी पानी ही पीता है, यानी पानी का और चावलों का बड़ा साथ है। तो ये आप देखेंगे माशाल्लाह हमारे हारी भाई जो हैं ये जो खेत में नहीं होनी चाहिए घास वगैरह खुदरो घास वगैरह उसको निकाल रहे हैं। अच्छा ये चूँकि बड़ा नरम और यूँ बोलें कि इसमें कीचड़ टाइप एक जो है वो होता है मिट्टी का सिलसिला, तो इसको निकालना ज़मीन में से ये आसान होता है। तो ये भी बड़ी महारत है, कारीगरी है कि कौन सा जो है वो पौधा वो निकालना है और किसको नहीं निकालना।
यहाँ पे जो जंगली घास होती है ना
जी,
अब आप देख रहे हैं पर्टिकुलरली एक ही किस्म की घास होती है
सही,
वो जो खींच रहे हैं निकाल रहे हैं यहाँ से ज़मीन से ठीक है। तो ये बाकी अब हम आम लोग जो देखेंगे उन्हें तो हमें भी ये चीज़ अभी घास ही लगेगी यार, मैं और आप अगर अनप्रोफेशनली देखें
ऐसी बात है
तो हमें भी
लग रहा है,
हमें भी तो घास लग रहा है हम होंगे तो ऐसे भी निकाल देंगे
सही सही सही।
तो इनको पता है कि कौन सी चीज़ इसके लिए नुकसानदेह है जो खाद का सारा वो मवाद ले लेगी और फसल को नहीं पहुँचने देगी, तो इसीलिए वो उस चीज़ को निकालेंगे पर्टिकुलरली
सही।
और ये सुबह के टाइम यानी सुबह सादिक से ही यानी मेरे ख्याल से 5 बजे उठ जाते हैं ये अपना काम शुरू करते हैं क्योंकि धूप की तपिश कम होती है और जिसमें काम करने में इनको आसानी होती है, तो ये सुबह अपना काम करके इस टाइम यानी
8-9 बजे तक
8-9 बजे तक अपना काम निपटा लेते हैं, फिर अपने काम में चले जाते हैं यानी कहीं पे कहीं मजदूरी कर ली या कोई भी काम कर लिया फिर अपने मामला बाद में देख ले,
सेकंड जॉब भी करते हैं,
सेकंड जॉब भी करते हैं
सही। ये देखेंगे आप माशाल्लाह बड़ी मेहनत के साथ कर रहे हैं। और नबी पाक सल्लल्लाहु तआला वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हुजूर फरमाते हैं कि कुछ गुनाहों का जो कफारा है ना वो रिज़्क हलाल कमाने के लिए जो मशक्क़त का सामना करना पड़ता है ना, कुछ गुनाहों का कफारा वो मशक्क़त ही है। तो रिज़्क हलाल कमाने के लिए बंदे को काम करने के हवाले से किसी भी तरह का कोई यूँ बोले कि सुस्ती का मुजाहरा नहीं करना चाहिए। हमारे दिलवेश भाई ये भी प्रॉब्लम है कि छोटा काम करना नहीं है, बड़ा काम मिलना नहीं है, लिहाजा क्या रहने फारिग रहना
ये बात है।
ये जो दीवार की चुनाई है ये गारे से हुई है या सीमेंट से हुई है?
नहीं ये सीमेंट से हुई है,
ये सीमेंट है सही। पहले जो है वो इसकी चुनाई दीवारों की वो गारे से भी होती थी
जी हाँ, आगे आपको कुछ दिखाते हैं
है
वो भी। जी हाँ गारे की है। पर अभी बरसात वगैरह की वजह से कुछ ढह गई हैं, कुछ हैं वो आपको दिखाते हैं इंशाल्लाह।
जमीन है आप देखें और ये चावलों की अभी जो होती है ना जब काश होती है धान की, तो ज़मीन की मिट्टी जितनी पानी में सड़ जाए उतना ज़्यादा वो फसल अच्छी होती है दिलवेश भाई।
जी जी सही बात,
यानी जितना पानी खड़ा होगा उसमें हल चलाएंगे, उसमें हमारे यहाँ तो उसके लिए एक लफ्ज़ भी बोलते हैं वो फसलों को क्या करते हैं उसका, यानी वो बिल्कुल पानी पानी होता है खेत में, फिर उसमें हल चलाते हैं तो फिर उसको दोबारा जो है वो लेवल करते हैं तो फिर हल चलाते हैं, तो 2-3 मरतबा ये प्रोसेस यानी जो हमारा एरिया जहाँ पर काश्त होती है इसकी धान की वहाँ ये है। तो ये फसल आप देखें मिट्टी बिल्कुल अभी ये चिपचिपी और गारा टाइप जो है हो गई है।
कर दे करम मौला कर दे करम, रख ले भरम मौला रख। کرم.
اللہ تعالیٰ نے سورہ رعد کی آیت نمبر 4 میں ارشاد فرمایا،
وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون.
اور زمین کے مختلف قطعے ہیں، حصے ہیں، اور پاس پاس ہیں، اور باغ ہیں انگوروں کے، اور کھیتی ہے، اور کھجور کے پیڑ ایک تھالے سے اگے، اور الگ الگ سب کو ایک ہی پانی دیا جاتا ہے، اور پھلوں میں ہم ایک کو دوسرے سے بہتر کرتے ہیں، اور بے شک اس میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے. آپ یقین مانیں دلوش بھیا، بھی ہم جب آ رہے تھے تو ہم یہی آیت مبارکہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نشانی قرآن میں زمین کی بیان فرمائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے اس کی حقانیت کو، اس کی سچائی کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے آ رہے تھے. میں نے رستے میں دلوش بھائی سے پوچھا، میں نے کہا یار یہ یہاں پر جو ہے یہ عجیب ماحول ہے، یہاں کا پانی تو ہے کھیت میں لیکن کہیں فصل ہے کہیں فصل نہیں ہے. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ کلر زمین ہے، یعنی اس میں کھیتی نہیں ہوتی، نمکیات اس میں جو ہے وہ زیادہ ہیں. اللہ اکبر. اس کی تفسیر سعد الجنان میں ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ زمین میں سے کوئی قابل زراعت ہے، کوئی ناقابل زراعت ہے، کوئی پتھریلا ہے، کوئی ریتلا ہے. اس کے بعد ایک منفرد انداز میں قدرت الہی کا بیان ہے کہ ایک ہی پانی اور ایک ہی زمین سے قریب قریب ہونے کے باوجود اللہ تعالی مختلف رنگ، خوشبو، ذائقے، سائز اور قسم کے پھل عطا فرماتا ہے. یہ ہم دیکھتے آ رہے ہیں، زمین کے ساتھ زمین لگی ہوئی ہے، باغ کے ساتھ باغ لگا ہوا ہے. کبھی آپ کو یہ بھی دکھائیں گے انشاءاللہ، چیکو کا باغ ہے اور ساتھ میں ہی کیا ہے، دوسرے پھل کا باغ ہے، شریفے کا باغ ہے. یہ آپ نے دیکھا؟
جی نہیں، ابھی تک
نہیں دیکھا. کراچی میں یہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا، کاٹھور کے اندر یہ میں نے مشاہدہ کیا، باقاعدہ دیکھا ہے. چیکو کا باغ ہے اور ساتھ ہی کیا ہے، شریفے کا باغ ہے. اللہ اکبر. اللہ کریم کا قرآن حق ہے، سچ ہے. اللہ اکبر. آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر اس میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہیں، نشانیاں ہیں کہ ایک ہی درخت پر اگنے والا کوئی پھل چھوٹا ہوتا ہے، کوئی بڑا ہوتا ہے، کوئی میٹھا ہوتا ہے، کوئی کھٹا ہوتا ہے. اللہ 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 اللہ. اس کے علاوہ اور کیا کیا باریکیاں ہیں، ایک ایک دانے میں رکھی گئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں. اللہ اکبر. یہ وہی بہتر جانتا ہے. تو بندے کو چاہیے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ نعمتیں کھائے اور اس کا شکر ادا کرے. اور جس رب تبارک و تعالیٰ نے مردہ زمین کو زندہ کر کے اس میں سے کھیتی اگائی ہے، اس رب تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے عشر بھی پورا پورا ادا کرے. حضرت فقیہ ابو الحسن مرکندی فرماتے ہیں، من منع العشر منع اللہ منہ برکت ارضہ، جو عشر نہیں دے گا اللہ اس کی زمین میں سے برکت ختم کر دے گا. تو عشر بھی دیں اپنی پیداوار کا، آپ کے باغات ہیں، آپ کی فصلیں ہیں، جو بھی آپ کاشتکاری کرتے ہیں، آپ کے کھیت کھلیان ہیں، سبزیوں کی کاشت ہے، طرح طرح کی ربیع کے موسم میں آپ فصلیں کاشت کرتے ہیں، حریف کی فصلیں آپ کاشت کر رہے ہیں، تو رب تبارک و تعالیٰ جو آپ کو دے رہا ہے تو اس کا حق بھی ادا کریں، عشر بھی ادا کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حال پہ اپنی رحمت فرمائے. صلی اللہ علیہ حبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد.
نہری نظام میں جن کو آبپاشی کے لیے پانی ملتا ہے ان کے بھی مختلف انداز ہوتے ہیں. کبھی تو کھالے کے ذریعے سے پانی کھیت تک پہنچتا ہے، اور کبھی کاشتکاروں کو نہر سے ایک موگا مل جاتا ہے جس کے ذریعے وہ اپنی فصلوں کو پانی دیتے ہیں. کبھی موگا نیچے ہوتا ہے اور زمین اونچی ہوتی ہے، پانی کو اپ لفٹ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، اور اس کے لیے کسان موٹریں یا ٹریکٹر استعمال کرتے ہیں، اور ٹیوب ویل کے ذریعے سے پانی کو زمینوں تک پہنچایا جاتا ہے اور اپ لفٹ کیا جاتا ہے. چنانچہ موگا اور موٹروں کا نظام دیکھنے کے لیے ہم کیتھر کنال کے کنارے پہنچے.
یہ تو گہرا ہوگا نا، یہاں سے تو کوئی 8-9 فٹ گہرا ہوگا، یہ اس کو گہرا کرنا بھی ضروری ہے نا. اچھا، وہاں سے یہاں آ رہا ہے اور یہاں سے
ये यहाँ से आ रहा है ना, यहाँ से यूँ आके ये इसमें जमा हो रहा है। अगर पानी कभी ओवर हो जाता है तो फिर ये जगह दी इजाज़त के बगैर मोटर के भी हम चला सकते हैं।
अच्छा, ये जो जगह है, ये सारा जो आ रहा है पानी आपका जैसे मोगा तो वही है ना?
उधर उसके बाद ये हमारी जमीन है।
सही।
जिंदगी 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 जिंदगी
लग तो रहा जैसे कम पानी है।
जी हाँ,
लेकिन वो जो निकल रहा आगे वो उससे लग रहा है कि पानी है। अच्छा, तो ये कौन पानी, ये महकमा हर वाली खोलते हैं?
ये हमारा जो मंजूर किया हुआ है वो पानी हमारे चलता रहता है।
जी,
हमें वो अलाउड है भाई ऑफिशियली। वो तकरीबन मेरे ख्याल से होगा 4 इंच के लगभग होगा।
नहर से पानी इधर आ रहा
है, यानी नहर से पानी हमें इतनी जरूरत है तो वो पानी यहाँ पे अलाउड है, बाकी सारा सबका सिस्टम है आगे चलता चलता।
अच्छा, और भी आगे बने हुए हैं?
जी हाँ,
यानी जो लाट ब्लॉक की जो तकसीम है जी। उसके मुताबिक अलग अलग जगह बना हुआ। सही,
यहाँ से ये पानी।
वैसे अगर ये नहर फुल हो
जी
फिर तो आपको पानी पानी माशाल्लाह हो जाए,
फिर पानी पानी हो जाता
है। अभी तो ये बस
अभी कम है,
बरकत के लिए चल रही।
जी हाँ जी,
यानी पानी इधर जितना मर्जी आपका इसमें से इतना ही आना है बस, जो भी
इतना ही आना है हमारा पानी, यानी इधर से जितना आ सकता है हम वही ले सकते हैं पानी।
आप इसमें नहीं ये लगा सकते वो उधर लगा हुआ उसको?
ये कानूनन इजाजत नहीं है।
अच्छा अच्छा,
कानूनन ये इजाजत नहीं होती। 100 फीट के बाद हमें आगे अपना मोटर लगा,
यानी नहर से मोगे से 100 फीट दूर,
100 फीट दूर
अपना वो लगा
वो मत। जी
सही होता। वैसे ये नाजरीन के नहरी निज़ाम है जहाँ पर, वहाँ एक सिस्टम ये होता है कि पानी नहर से खाले में आता है, खाले से आगे फिर जो है वो खेतों में लगाया जाता है। यानी जहाँ पर खाले का निज़ाम मजबूत है वहाँ ये सिस्टम है। पानी जो है नहर से मोगे के ज़रिए से यहाँ आ रहा है और ये तकरीबन 100 फुट के फासले पर यहाँ पानी को अपलिफ्ट करने के लिए यहाँ मोटरें वगैरह जो है लगाई गई हैं, क्योंकि नहर जो है ये नीची है, पानी नीचा है और ज़मीन ऊपर है, तो ये बाकायदा तौर पर फिर बिजली के ज़रिए से मोटर चलती है, मोटर उस पंप को चलाती है और पानी फिर आगे जाता।
यहाँ पर ये सारे मामलात देखने के बाद हम वापस अपने मतलूबा मकाम की जानिब रवाना हुए। रास्ते में हमने अल्लाह पाक की कुदरत का एक नज़ारा देखा, क्या था आइए आप भी देखिए।
उधर नहर है, यहाँ माशाल्लाह धान की ओ दूर दूर तक फसल नजर आ रही है। ये दरख्त कौन से दरवेश भाई?
ये मुख्तलिफ किस्म के दरख्त हैं, ज़्यादातर वो कांटेदार दरख्त होते हैं, हम लोग उसे अपनी सिंधी जुबान में यानी बलोची में यहाँ पे लोकल जुबान में करीट बोलते हैं। तो वो
कांटे कहते हैं,
कांटे कीकर? जी हाँ, कांटेदार दरख्त होते हैं जैसे ये देख रहे हैं, ज्यादातर वो होते हैं। और
ये बेल भी है, बेल किस चीज़ की है?
ये सामने है बेल,
नहीं ये भी बेल है,
ये बेल है, ये तुरी लगाई इन्होंने।
किसकी बेल है ये?
तुरी,
तुरई की बेल, काली तुरी ना?
जी हाँ तुरई है।
मुझे सब्जियों में बहुत पसंद है अल्हम्दुलिल्लाह। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। यहाँ पर अभी हम केथर के नाल के पास बैठे हुए हैं, ये ज़रई ज़मीन है माशाल्लाह, और यहाँ दरख्त है और बेरी का दरख्त है और बड़ी ज़बरदस्त छाँव है इसकी, और बेर भी इस पर लगते हैं। कौन से छोटे बेर लगते हैं, मोटे बेर लगते हैं? बैठे ज़रा बैठे, वो जो लाल लाल हो जाते हैं वो वाले?
हाँ लाल होता है, फिर हाँ जी जी,
इसको काठे बेर भी कहते हैं इसको। आप क्या क्या कहते हैं उसको?
इसको बेर बोलते हैं हम।
आप लोग बेर ही कहते हैं?
बेर कहते हैं।
तो एक जो मोटे बेर होते हैं वो क्या बोलते हैं?
पेमंद है, पेमदी।
अच्छा
हाँ,
बाद जगहों पर इसको जो है वो सेव बेर बोला जाता है, सेव बेर। और जो छोटे बेर होते हैं वो जो लाल लाल हो जाते हैं,
लाल होते हैं,
उनको काठे बेर कहते हैं। और एक होते हैं कलकोटू बेर, कभी खाए ना कलकोटू?
हाँ कलकोटू,
वो आप खाएं ना बेर अगर खा लें तो वो आपके गले को वो पकड़ लेगा उसको। हाँ जी हाँ जी, तो कलकोटू बेर ये भी होते हैं। बेरी से मुझे रूमी कश्मीर हजर जनाब मियाँ मोहम्मद बख्श साहब आरफे खड़ी, इनका खीर याद आ गया, फरमाते हैं
लखा बेर बेरी नू लग दे ते लगदे ते चढ़ जांदे जेड़े पक्के रैन मुहम्मद ओ यो वटे खांदे। फरमाते हैं कि बेरी को लाखों बेर लगते हैं, लगते हैं फिर झड़ जाते हैं, लेकिन जो बेर पक्का रहता है ना उसी को लोग पत्थर मारते हैं उसको लेने के लिए,
ऊपर से चढ़ करके उसको धुना देता है,
उसको हिलाते हैं,
उसको हिलाते हैं वो बेर पक्के जो है गिरते हैं,
गिर जाते हैं। यहाँ पर मियां मोहम्मद बख्शाब रहमतुल्लाह अलैह पैगाम ये दे रहे हैं, आप फरमाते हैं कि बंदा अच्छा हो उस पर भी मुसीबत आ जाती है, बंदे का अखलाक किरदार तरीका अच्छा हो सुथरा हो पाकीज़ा हो तो उस पर बाज़ वक़्त इम्तिहान भी आ जाते हैं, तो इम्तिहान के आने पर परेशान नहीं होना चाहिए बल्कि इम्तिहान में पास होना चाहिए, सब्र करना चाहिए, अल्लाह को याद करना चाहिए, अल्लाह तबारक व ताला हम सबको सब्र व बर्दाश्त की दौलत नसीब फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।
जिंदगी कैसे नए रंग दिखलाए, जिंदगी असबाक हर दिन नए लाए, जिंदगी कैसे नए रंग दिखलाए, जिंदगी असबाक हर दिन नए लाए, जिंदगी